का था, रूह वही रूप नया। गाथा में आप सुन रहे हैं अलका सैनी की लिखी कहानी मिथ्या अभिमान। जब उन दोनों ने जन सुविधा कैंप में प्रवेश किया तो देखा कि वहां बहुत भीड़ थी और एक स्टेज पर शहर की जानी मानी हस्तियां विराजमान थी। अनामिका बेशक कभी किसी को निजी तौर पर मिली नहीं थी, पर उसे बचपन से ही अखबार पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए वो कुछ खास लोगों को पहचानती थी। अनामिका और नेहा टेंट के भीतर लगी हुई कुर्सियों पर जाकर बैठ गई और अपनी बारी का इंतजार करने लगी। एक तरफ टेंट में सरकारी अधिकारियों से काम करवाने वालों की भीड़ थी, तो उधर दूसरी तरफ स्टेज पर माइक में बार बार कुछ न कुछ घोषणा की जा रही थी और कुछ स्थानीय नेता बारी बारी से अपना भाषण दे रहे थे। अनामिका ने देखा कि स्टेज में बैठे लोगों में से सिर्फ दो ही औरतें हैं। ये सब देखकर उसे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। वो अपने कॉलेज के होनहार विद्यार्थियों में से एक थी और हर गतिविधि में बढ़ चढ़कर भाग लेती थी, और स्टेज पर चढ़कर भाषण देने का तो उसे खास शौक था। किसी भी विषय पर वो ऑन द स्पॉट ही एक भाषण तैयार कर लेती थी। उसकी बुद्धिमता के कारण अध्यापक गण उसकी शरारतों को ना सिर्फ नजरअंदाज कर देते थे, बल्कि वह उनकी प्रिय शिष्या भी थी। मगर जैसे ही कॉलेज की पढ़ाई खत्म हुई, वैसे ही वह जयंत के साथ विवाह बंधन में बंध गई। धीरे धीरे वह दिन प्रतिदिन अपनी घर गृहस्थी में उलझती गई। बच्चों की परवरिश और घर की जिम्मेवारियां संभालते संभालते वह समय से पहले ही अपनी उम्र के हिसाब से बड़ी दिखने लगी। परिपक्वता आने की बजाय उसमें खालीपन सा समाने लगा। उसे ऐसे लगता कि वह केवल एक त्याग की मूर्ति बनकर रह गई है। उसका जीवन व्यर्थ बीतता जा रहा था। उसके बचपन से लेकर जवानी के सपने सब मिट्टी में मिल रहे थे। वह देश और समाज को लेकर कितनी बड़ी बड़ी बातें किया करती थी। वह अपने जीवन को एक नया आयाम देना चाहती थी, अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहती थी, कुछ करके दिखाना चाहती थी। उसे लगने लगा था कि श्रीमती जयंत के अलावा उसकी अपनी खुद की तो कोई पहचान है ही नहीं, मगर घर के संकीर्ण माहौल और जयंत के दकियानुसी विचारों के कारण वह खुद को बहुत असहाय महसूस करती थी। वह बहुत ऊर्जावान और जोशीली थी, मगर वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। अच्छा खासा खुशहाल परिवार होने के बावजूद उसे कमी सी महसूस होती थी। इसी दौरान जब वह अपनी दोनों बेटियों की पढ़ाई को लेकर बहुत व्यस्त थी कि एक दिन उसे अपनी सहेली नेहा के कहने पर एक जन सुविधा कैंप में जाना पड़ा। नेहा को अपना पहचान पत्र बनवाना था। उसके लिए उसे क्षेत्र के विधायक महोदय से हस्ताक्षर करवाने थे। नेहा का बचपन एक छोटे से गांव में बीता था, इसलिए वह बात करने में मन ही मन घबराती थी और अनामिका से कहने लगी कि तुम मेरा एक काम कर देना, मेरे लिए इस प्रार्थना पत्र पर विधायक महोदय के हस्ताक्षर करवा लाना। अनामिका उससे मजाक करते हुए कहने लगी, क्यों, मैं कोई यहां पर सबको जानती हूं, और तुम तो यहाँ इस शहर में कई सालों से रह रही हो। और मैं तो अभी नई नई आई हूँ, किसी को खास जानती भी नहीं। जैसे ही नेहा के नाम की घोषणा हुई तो वह उठ खड़ी हुई और अनामिका से भी अपने साथ चलने के लिए कहने लगी। अनामिका, तुम चलो ना मेरे साथ, मैं तो वहां जाकर कुछ बोल भी नहीं पाऊंगी, समझाना तो बहुत दूर की बात है। अनामिका उसका आग्रह टाल नहीं सकी। यूं तो वह बचपन से ही आत्मविश्वास से भरी थी और अपनी बात कहने में तो उसे अजब ही महारत हासिल थी। उसने नेहा से उसके कागज लेकर खुद पकड़ लिए और स्टेज पर जाकर विधायक महोदय को औपचारिकतावश अभिवादन कर पहचान पत्र बनाने में आने वाली कठिनाइयां समझाने लगी। सर, आप तो जानते ही हैं कि आम आदमी को अपना कोई भी काम करवाने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये सरकारी मुलाजिम कहां किसी की बात इतनी आसानी से सुनते हैं। कितने कितने चक्कर काटने पड़ते हैं एक मामूली से काम के लिए। ऊपर से इन सरकारी मुलाजिमों की जब तक जेब गर्म ना करो तब तक तो कोई काम ही नहीं बनता। अगर कोई बेचारा इन लोगों को पैसे देने की हैसियत ना रखता हो तो उसकी तो इन चक्रों में चप्पलें भी टूट जाती हैं और काम फिर भी नहीं बनता। सर, अगर आप इन कागजों पर अपने हस्ताक्षर कर देते तो मेरी सहेली का काम आसानी से हो जाता। विधायक महोदय उसकी वाक कुशलता से इतने प्रभावित हुए कि एक मिनट की देरी किए बिना उन कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। अनामिका खुशी से फूली नहीं समा रही थी। बस फिर तो उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया और विधायक महोदय को लोगों को पेश आने वाली अन्य समस्याओं से अवगत करवाने लगी। उसकी बात सुनकर विधायक महोदय बोले, मैडम, मैं आपकी सभी बातों से 100% सहमत हूं, परंतु बेहतर होता यदि आप अपने विचार वहां माइक पर जाकर व्यक्त करती, जिससे सभी अफसरगण भी इन बातों को जान पाते। हमें आप जैसे लोगों की ही तो जरूरत है, जो समाज और देश के लिए इतनी चिंता करते हैं और कुछ कर दिखाने की काबिलियत भी रखते हैं। विधायक महोदय की बातें सुनकर एक बार तो वह कुछ देर के लिए हिचकिचाई कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। मन ही मन सोचने लगी कि इतने जाने माने लोग इस सभा में बैठे हैं, कहीं उसका मजाक ही ना बन जाए। उसकी सहेली नेहा, जो उसके साथ खड़ी सब बातें सुन रही थी, उसने भी उसका हौसला बढ़ाया और कहने लगी, जा अनामिका, बोल दे अपने मन की बातें। अरे, तू तो कॉलेज के समय से ही भाषण देना जानती है। फिर अनामिका ने मन ही मन अपने को तैयार कर लिया, क्योंकि विधायक महोदय की बात को वह टाल भी नहीं सकती थी। मंच पर जाकर सबसे पहले उसने विधायक महोदय का धन्यवाद किया और फिर अपनी हिचकिचाहट को दूर करते हुए लोगों को रोजमर्रा पेश आने वाली समस्याओं का खुलासा करने लगी। जिस आत्मविश्वास के साथ उसने अपनी बात रखी, उससे सभी लोगों ने तालियां बजाकर उसका हौसला बढ़ाया। यह सब देखकर मंच पर विधायक महोदय के साथ मौजूद महिलाएं मन ही मन कुछ विचलित सी नजर आ रही थीं, क्योंकि शायद उनमें से कोई भी इतनी पढ़ी लिखी नहीं लग रही थी। जब अनामिका ने अपना भाषण खत्म किया तो विधायक महोदय ने उसे अपने पास बुलाया और उसका संक्षिप्त परिचय लेते हुए उसका उत्साह बढ़ाते हुए कहने लगे, बेटे, तुम तो बहुत अच्छे वक्ता हो, यह सब तुम्हारे पढ़े लिखे होने का संकेत है। अब मेरी इच्छा है कि तुम अपनी प्रतिभा घर बैठकर व्यर्थ मत गवाओ। भगवान तुम्हें खूब कामयाबी दें। वह दिन न सिर्फ उसकी प्रेरणा का दिन था, बल्कि उस दिन से उसके जीवन में एक नया मोड़ आ गया। उस दिन के बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी मेहनत और काबिलियत के बलबूते पर वह दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करती गई। धीरे धीरे कर उसने राजनीति में अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया। अपने एरिया के विकास को लेकर उसने कई कार्यक्रम आयोजित करवाए। उसमें उसने न सिर्फ शहर के गणमान्य व्यक्तियों को बल्कि विधायक महोदय को खास तौर पर आमंत्रित किया। अनामिका में एक नेता होने के सारे गुण विद्यमान थे। इस तरह विधायक महोदय के आशीर्वाद से शहर में उसका नाम जाने पहचाने लोगों में आने लगा। एक औरत होने के बावजूद भी उसमें पुरुष प्रधान समाज में अपनी काबिलियत के बलबूते पर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की अद्वितीय क्षमता थी। जयंत अनामिका की क्षमता से प्रभावित अवश्य थे, पर कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स के शिकार भी थे। अनामिका कदम कदम पर उम्मीद करती थी कि उसके पति उसका भरपूर साथ दे। उसका मानना था कि जितना सत्य ये है कि हर कामयाब पुरुष के पीछे एक औरत का हाथ होता है, उससे भी बड़ा सच ये है कि एक औरत को कामयाब होने के लिए भी अपने पति के साथ और विश्वास की जरूरत होती है। एक दिन बातों बातों में अनामिका ने अपने मन की बात जयंत के सामने रख दी। जयंत, तुम्हें तो पता है कि विधायक महोदय मेरी प्रतिभा से कितने प्रभावित हैं, इसलिए मैं राजनीति को अपना लक्ष्य बनाना चाहती हूं। जयंत ने उसकी पूरी बात सुने बिना ही बीच में बोलना शुरू कर दिया। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। क्या तुमने देखा नहीं कि इस क्षेत्र के लोग कितने गंदे, भ्रष्ट और मतलबी होते हैं? कितनी औरतें हैं जो घर से बाहर निकलती हैं? सब कार्यक्रमों में आदमी ही ज्यादा होते हैं। अनामिका से भी रहा न गया। चाहे हमारा समाज कितनी भी तरक्की कर ले, पर तुम मर्द लोग दोहरा जीवन जीते हो। बाहर काम करने वाली महिलाएं वैसे तो तुम्हें बहुत लुभाती हैं, और अपनी पत्नी के पैरों में बेड़ियां डालकर रखना चाहते हो। हमारे समाज में तब्दीली कैसे आएगी? देख नहीं रहे हो, आजकल तो हर क्षेत्र में महिलाएं काफी उच्च पदों पर आसीन हैं। मगर जयंत कहां मानने वाला था। अनामिका की किसी भी दलील का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। कदम कदम पर जयंत के शकी स्वभाव और संकीर्ण विचारधारा ने अनामिका की जिंदगी में कुछ कर दिखाने की इच्छा को पूर्ण विराम लगा दिया था। जब वह नौकरी करना चाहती थी तो जयंत ने उसे अपनी इच्छा अनुसार नौकरी नहीं करने दी थी। जयंत की हर बात पर टोकने की आदत से अनामिका बहुत दुखी होती थी कि ये मत करो, ये कपड़े मत पहनो, जबकि अनामिका अपनी घर गृहस्थी की जिम्मेवारियों में भी कोई कमी नहीं आने देती थी। पूरे तन मन से हर काम वो भली भांति निपटाना जानती थी। घर के कामकाज को लेकर अनामिका ने जयंत को कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया था। बावजूद समय समय पर अनामिका जयंत की विचारधारा में परिवर्तन लाने का भरसक प्रयास करती थी। कभी जब जयंत अच्छे मूड में होता तो वह फिर से कोशिश करने लगती, जयंत, तुम तो इस बात को अच्छी तरह से जानते हो कि आजकल औरतें अपने घर से दूर जाकर, यहां तक कि विदेश में भी जाकर नौकरियां करती हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे संभालती हैं। पता नहीं तुम किस मिट्टी के बने हो जो आज भी बाबा आदम के जमाने की बातें करते हो। तुम्हें तो 50 वर्ष पहले पैदा होना चाहिए था। मेरा घर में खाली बैठे बैठे दम घुटने लगता है। जयंत अनामिका की बातें एक कान से सुनता था और दूसरे कान से निकाल देता था। अनामिका दिन पर दिन राजनैतिक गतिविधियों में उलझती जा रही थी। हर दिन उसे किसी ना किसी कार्यक्रम में जाना पड़ता था। कभी कभार अनामिका मना कर जयंत को भी साथ ले जाती थी, पर वहां मीटिंग में ज्यादातर आदमी ही होते थे, यह देखकर जयंत मन ही मन घुटता रहता था। वह हर किसी को शक की निगाहों से देखता कि उनकी कुदृष्टि अनामिका पर पड़ रही है। इस तरह जयंत अपने संकीर्ण विचारों के कारण अपनी बेचैनी से अनामिका को भी बहुत असहज बना देता था, जिससे वह भी मन ही मन कोई कमी सी अनुभव करती और किसी मुद्दे पर भी किसी से खुलकर बात ना कर पाती। अनामिका इतने बड़े शहर के विश्वविद्यालय में पढ़ी लिखी थी, जहां पर लड़के लड़कियां साथ उठते बैठते थे, साथ साथ घूमने भी जाते थे। इसलिए इस तरह का जयंत का व्यवहार उसे बहुत ही अटपटा सा लगता था। वह जयंत को समझाते हुए कहती थी, आजकल दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और औरतें तो आजकल हर क्षेत्र में आगे हैं, और जब तक वह अपने विचारों में दृढ़ हैं, किसकी हिम्मत है जो वह उससे किसी प्रकार की कोई फिजूल बात कर सके। बस आप शांत रहें और अपने दिमाग में उत्पतंग बातें मत लेकर आया करें। अनामिका के इतना समझाने के बावजूद भी जयंत खुद को परिपक्व नहीं बना पाता था और कहने लगता, चलो बस अब बहुत हो गया और यहां से अब चलते हैं। अनामिका मन ही मन जयंत के व्यवहार से बहुत दुखी होती और उसके साथ उसे मजबूरी वश कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर वापस आना पड़ता। कभी कभी तो ऐसा होता था कि यदि जयंत अपने काम की वजह से अनामिका के साथ किसी कार्यक्रम में नहीं जा पाता था, तो काम पर भी उसके दिमाग में शक के बीज पनपते रहते थे, और यदि वह उसके साथ जाता भी तो वह उसे बहुत ही असहज अवस्था में डाल देता था। अनामिका को जयंत के साथ होने पर यही लगता था कि जयंत का ध्यान उस पर ही होगा कि वह किससे बातें कर रही है, और मन में यही सोच रहा होगा कि आसपास के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। इस कारण अनामिका बिल्कुल भी सहज होकर किसी के साथ स्वतंत्रता से बात नहीं कर पाती थी। वह जयंत के वहां होने से बहुत घुटन महसूस करती थी। एक तरफ तो उसके पास जीवन में कुछ कर दिखाने का एक स्वर्णिम अवसर था, तो दूसरी ओर जयंत के स्वभाव में अप्राकृतिक सा परिवर्तन उसकी राह में रोड़ा बन रहा था। कभी कभी तो वह हताश होकर बैठ जाती थी, पर वह बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता थी और अपनी काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह लगना भी उसे गवारा नहीं था। वह अपनी घर गृहस्थी की जिम्मेवारियों में भी कोई कमी नहीं आने देती थी। पूरे तन मन से हर काम वह भली भांति निपटाना जानती थी। घर के कामकाज को लेकर अनामिका ने जयंत को कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया था। स्थानीय राजनीतिक स्तर पर उसकी गहरी पैंट होती जा रही थी। विरोधी पक्ष के लोगों को भी उसमें खामियां ढूंढने पर भी नहीं मिलती थी और वह भी उसकी तारीफ किए बिना ना रहते। इस तरह समाज के लिए कुछ करने में उसे एक अलग तरह की आत्मसंतुष्टि मिलती और उसे लगता कि उसका जीवन व्यर्थ नहीं जा रहा है। पर मन का एक कोना अभी भी रिक्त सा रहता। उसे इस बात की पीड़ा हर समय मन ही मन खलती रहती कि वह चाहे कितनी ही अच्छी तरह कोई भी काम क्यों ना कर ले, चाहे घर का हो या फिर राजनीतिक क्षेत्र का, पर जयंत ने कभी अपना मुंह खोलकर उसकी तारीफ नहीं की थी। बाहर वाले लोग उसके काम की तारीफ करते नहीं थकते थे और उसके साथ साथ हर कार्यक्रम में जयंत को पूरा मान सम्मान मिलता था। पर सबके बावजूद जयंत हर समय गुमसुम सा ही रहता। वह हर समय जयंत की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखती रहती कि वह कभी अपना प्यार भरा हाथ उसके सिर पर रखे और उसकी हिम्मत बढ़ाए। आखिर वह थी तो एक औरत ही, जो बाहर से बेशक जितनी भी सशक्त नजर आए पर अपने पति के प्यार भरे स्पर्श के लिए मन ही मन तरसती रहती। वह दिन पर दिन लोगों में लोकप्रिय होती जा रही थी। क्षेत्र के विधायक महोदय की तो वह बहुत चहेती बन गई थी, क्योंकि जब भी कोई कार्यभार उन्होंने उसे सौंपा था तो पूरे तन मन से वह उनकी उम्मीदों पर खरा उतरती थी। उस दिन तो अनामिका के पांव जमीन पर नहीं लग रहे थे। उसे लग रहा था कि जिस सपने को वह बचपन से देखती आई है वह उसके बहुत करीब आ गया है। वह तो मानो आसमान में उड़ रही थी। विधायक महोदय ने खुद उसे यह खुशखबरी सुनाई थी कि अगले माह दिल्ली में होने वाली पार्टी की मीटिंग में उसे भी शामिल होना है। पार्टी ने उसे खास तौर पर महिला विंग के प्रधान का कार्यभार सौंपा था। वह मन ही मन सोच रही थी कि उसकी बरसों की मेहनत और तपस्या का फल मिलने वाला है। परिजनों में अब उसकी धाक मच जाएगी। जो परिजन उस पर तरस खाया करते थे और मन ही मन उसका मजाक उड़ाया करते थे, वह उनको दिखा देगी कि आखिर उसकी काबिलियत का मोल पड़ ही गया। वह बड़ी बेसब्री से जयंत के आने का इंतजार करने लगी। वह उसे ये खुशखबरी सुनाने के लिए बहुत बेताब हो रही थी। जैसे ही वह खबर अनामिका ने जयंत को सुनाई तो उसके चेहरे पर एक भाव आ रहा था तो एक भाव जा रहा था। फिर कुछ क्षण पश्चात वह एकदम से उग्र हो गया और तमतमाते हुए बोलने लगा, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? अगर तुम्हें स्थानीय प्रोग्रामों में आने जाने की इजाजत दे दी तो इसका मतलब तुम्हें कुछ भी करने की आजादी मिल गई। अब तुम इतनी बड़ी नेता बन गई हो जो शहर से बाहर जाने का भी सोचने लगी। तुम्हें फिर भी जाना हो तो जाओ, पर यह उम्मीद ना करना कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनकर साथ चलूंगा। और एक बार कदम दहलीज के बाहर निकालने के बाद फिर दोबारा इस घर की तरफ मुड़कर मत देखना। यह कहकर जयंत पैर पटकते हुए घर से बाहर चला गया। अनामिका उसकी बातें सुनकर मानो आसमान में उड़ते उड़ते जमीन पर आ गिरी हो। अभी आप सुन रहे थे अलका सैनी की लिखी कहानी मिथ्याभिमान। गाथा में इसे आपके लिए प्रस्तुत किया शिवानी आनंद ने।